ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। ये कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस कदम को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ 25 लाख से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं।
एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जमीनों के रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण कर रही है और अब तक 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 से 8 वर्षों में देश में 98% जमीनों के रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। पश्चिम बंगाल में सियालदा की एक अदालत ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय राय को दोषी ठहराया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। अदालत उसी दिन दोषी को सजा सुना सकती है। न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई ने जो साक्ष्य सौंपे हैं उससे साबित होता है कि संजय राय इस घटना में दोषी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल 1,521 नामांकन पत्र भरे गए हैं। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में चाकू से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति से पूछताछ की है। उधर महाराष्ट्र के गृह, राजस्व, ग्रामीण विकास मंत्री योगेश कदम ने कहा कि घटना के पीछे लूटपाट ही एकमात्र मकसद था और हमले में कोई अंडरवर्ल्ड गिरोह शामिल नहीं है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में श्रद्धालु और तीर्थयात्री अब आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन को सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से लाइव सुन सकते हैं। आज सुबह 8:30 बजे कुंभवाणी समाचार बुलेटिन महाकुंभ नगर में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से प्रसारित किया गया। 10-10 मिनट का कुंभवाणी समाचार बुलेटिन सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कल रात किए गए रूसी हवाई हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि हमले में एक मेट्रो स्टेशन और पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने पहले ड्रोन और फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी सेना ने बताया कि उसने रूस द्वारा दागे गए 39 ड्रोन में से 24 और 4 मिसाइलों में से 2 को नष्ट कर दिया। रूस ने दक्षिण पूर्वी शहर ज़ापोरिज्या पर भी हमला किया। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा है कि इस हमले में 10 लोग घायल हो गए और एक औद्योगिक संस्थान को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रात के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 19 फरवरी से शुरू हो रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान और शुभमन गिल उपकप्तान होंगे। हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हुई है। भारत की महिला और पुरुष टीम खो खो विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज शाम नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। वहीं पुरुष टीम का सामना भी दक्षिण अफ्रीकी टीम से होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी का सामना मलेशिया के गो ज़ेफेई और नूरजुद्दीन की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।